नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम शलोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्रम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम
हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। और थोड़ा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आप सभी का इस उत्साह के लिए, आप सभी भक्तों का, माताओं का, बालकों का, दूसरे दिन की इस भागवत कथा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी भाग्यशाली हैं कि जिस चीज के लिए हमें भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, उस कार्य में हम इस शरीर को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रवाह तो संसार में पाप की ओर ले जाने का है। पाप क्या होता है ये पाप शब्द दो शब्दों को मिलाकर के बनता है, प प्लस अपह, प और अपह मिलकर के इति पापह, पाप बनता है। प शब्द का अर्थ होता है परम ईश्वर। परमेश्वर कौन है? श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण। अपा मतलब उनके प्रति अपगति हो जाना, उल्टा हो जाना, घूम जाना, भगवान से विमुख हो जाना, भगवान की ओर मुख न करके भगवान की विपरीत मुंह को कर लेना, भगवान की ओर पीठ कर लेना और फिर चलना गति। तो चलते समय हम जो कुछ भी करेंगे वो सब पाप कहलाएगा। फिर चाहे वो अच्छे कार्य नजर आए वो, या वो बुरे कार्य कहलाए। भगवान से दूर जाएंगे तो संसारी दृष्टि से फिर वो कुछ भी क्यों नहीं है, वो सब पाप है। हमको लगता है कि हत्या करना पाप है, नहीं। भगवान की ओर जाते समय यदि हत्या हो जाए तो वो पाप नहीं है। तो अत्यंत पुनीत कार्य है, वही भक्ति है। जैसे अर्जुन ने करोड़ों लोगों का वध किया लेकिन उनको पाप नहीं लगा, वो बड़े महान माने गए, महान भक्त कहलाए। किसी का घर जलाना पाप लगता है, गांव जलाना और बड़ा पाप है, किसी देश को ही जला देना कितना बड़ा आतंकवादी कहलाएगा। हनुमान जी ने लंका को ही जला दिया, फिर तो बहुत बड़े पापी होने चाहिए। नहीं, वज्र अंग बलि कहलाए, जिनके अंग वज्र की तरह हैं और राम जी के परम भक्त बन गए। जलाने जैसा भयानक कार्य किया फिर भी भगवान की परम भक्त बन गए। इसका मतलब पाप क्या है? जब भगवान से दूर जाते समय हम सच बोलें, दूसरे लोगों का ध्यान रखें, मीठा बोले, दान धर्म करें, कुछ भी करें, वो सब क्या है? पाप है। और भगवान की ओर जाते समय सच बोलें, अच्छी बात है, वो भी भक्ति है। झूठ बोले, वो भी भक्ति है। भगवान की ओर जाते समय अगर झूठ नहीं बोल रहे तो जरूरी है झूठ बोलना, तब फिर वो पाप हो जाएगा नहीं बोलना। महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अभी द्रोणाचार्य आएंगे आपके पास और आप कह देना अश्वत्थामा मारा गया। तो भगवान की ओर जाने का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति कहता है कि मैं तो भगवान की ओर चल रहा हूं। भगवान की ओर जाने का मतलब होता है भगवान की आज्ञा का पालन करना। और भगवान से दूर जाने का मतलब क्या होता है? भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना। भगवान की क्या आज्ञा है हमें कैसे पता चलेगा? बोले जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो गुरुजी हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भगवान की आज्ञा है ना। और गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं करना, ये भगवान से दूर जाना है या भगवान की ओर जाना है? सब नहीं बोल रहे हैं, मेरे को लगा कठिन प्रश्न पूछा है मैंने। गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं करना, ये क्या है? भगवान से दूर जाना। गुरुजी की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी इसलिए गुरु ही धारण नहीं करना, ये क्या है? ये क्या है? पाप है या पुण्य? भगवान से दूर जाना है या पास में जाना है? पास में जाना है, दूर जाना है। गुरु जी की बात नहीं सुनना, गुरु जी को ही स्वीकार नहीं करना। पहले वाला जनरल बोगी ना, भगवान का प्रतिनिधि साधु लोग भी होते हैं, उनकी बात नहीं सुनना वो भी क्या है? पाप है। दूर जाना है या नजदीक जाना है? दूर जाना है। भगवान के प्रतिनिधि माँ बाप नहीं है क्या? बोलो। कल बताया था ना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माँ की बात मानना भगवान के पास जाना है, दूर जाना है? पास जाना। पिताजी की बात मानना, पास जाना है दूर जाना है, पास जाना, नहीं बात मानना दूर जाना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी कह रहे हैं कोई और बात कि बेटा एकादशी का पालन करो, और मां कह रही कि मर जाएगा, दुबला पतला हो गया है, खा पी अच्छी तरह से, अब क्या करें, किसकी बात माने। दोनों ही भगवान की प्रतिनिधि हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। बीच में साधु लोग होते हैं तो साधु कहते, पता है गुरुजी ने क्या कहा था तेरे को, एकादशी नहीं पालन करता तू। वो कहता, मैं तो करना चाहता हूं प्रभु जी, लेकिन मां मानती नहीं, घर वाले लोग तैयार नहीं होते, क्या करें। तो बहुत धर्म संकट में फंस जाता है। जीव बहुत धर्म संकट में फंस जाता है। कई बार वो कहता है, क्या बड़ों की बात नहीं माननी चाहिए, स्कूल में तो यही पढ़ाया जाता है कि बड़ों की बात माननी चाहिए। आगे ही तो सरकना, उसके लिए बोलने की क्या जरूरत है, ऐसे थोड़ा हाथ लगाओ सामने वाला सरक जाएगा। फिर भी ना सरके तो उठा के रख दो आगे, बोलो नहीं। बोले सब बड़ों की बात छोड़ दो, गुरु जी की बात मानो। भक्त लोग ऐसा कह देते, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, बचपन में हम छोटे थे वो लोग भी तो सही बात करते हैं। बोले जब छोटे थे हमने दाएं पैर की चप्पल बाएं में पहनी थी, बाएं पैर की चप्पल सब लोगों ने पहना है ना, ऐसा कई बार अपनी चप्पल छोड़ के पिताजी की चप्पल में पैर डाला है, तब माता पिता कहते नहीं बेटा ये वाला चप्पल इस पैर में, ये वाला इस पैर में। अच्छा दो चार बार बड़ों की चप्पल पहन के या उल्टी चप्पल पहन के गिर पड़े थे, तब फिर सोचा कि हाँ ये जो कह रहे हैं करके देख लेते हैं, और फिर चप्पलें बदला, अच्छी तरह चलने लग गए। तो उन लोगों ने जो बातें कही थी वो भी कैसी कही थी, सही बात थी गलत थी, तो वो भी सही कह रहे हैं गुरुजी भी सही कह रहे हैं, फिर दो बातें आपस में टकरा क्यों रही, टकरानी तो नहीं चाहिए ना। जो बड़े हैं उन्होंने भी चप्पल पहनना कहां से सीखा था, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अर्थात उन्होंने भी जो भी अच्छी बातें सीखी थी कहां से सीखी थी, अपने माता पिता से। और जो वो माता पिता थे उन्होंने अच्छी बातें कहां से सीखी थी, अपने माता पिता से, अर्थात हमारे दादी बाबा हो गए ना। वो दादी बाबा ने जो बातें सीखी थी सही वाली वो कहां से सीखी थी, पर दादा पर दादी से, अपने बड़ों से। उन्होंने कहां से सीखा था, अपने बड़ों से। उन्होंने कहां से सीखा था, अपने बड़ों से। और उन्होंने कहां से सीखा था, अपने बड़ों से। ऐसे चलते चलते कहां तक बात पहुंचेगी, भगवान श्री इंजन तक पहुंच जाएगी ना। इसका मतलब सही बात वास्तव में आ कहां से रही है, भगवान से जा रही है। तो फिर तो बात एक दूसरे को कभी काटनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं कट रही है बात इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन ढीला हो गया है, बीच में कनेक्शन कहीं ना कहीं ढीला हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अब कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इसका सोचना पड़ेगा ना। इसको सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान ने जो बातें बताया है वो तो रिकॉर्डेड भी है भगवद गीता के अंदर, उसको पढ़ना पड़ेगा। भगवान की सारी बातें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में पालन भी किया है, उदाहरण भी है, एग्जाम्पल्स भी है। वो सारे उदाहरण भी रिकॉर्डेड हैं, वो भागवत के अंदर है। तो भगवान क्या कहे हैं और उसको किस किस ने पालन कैसे किया है, ये सब किस में है? क्या कहे हैं वो किस में है? गीता में। किस किस ने उन बातों को कैसे पालन किया वो कहाँ है? भागवत में। तो भगवान का सीधा सीधा बात हमारे पास कैसे उपलब्ध है? किसके रूप में? गीता और भागवत के रूप में। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? वैसे बॉल तो मैं विकेट टू विकेट डाल रहा हूं, बाउंसर तो एक बार भी नहीं डाला अभी तक। तो भगवान के द्वारा कही हुई बातें हमारे पास रिकॉर्डेड है गीता और भागवत में। तो इन बातों को पहले पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि भगवान ने वास्तव में क्या क्या कहा है। अब कोई माता कह रही है कोई बात, पिता कह रहा है कोई बात, कोई भी बड़ा व्यक्ति चाचा ताऊ कह रहा है कोई बात, नाते रिश्तेदार कह रहे हैं कोई बात, उस बात को क्या करना है? वो बात सही है या गलत है उसको करने के लिए क्या, पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमने पढ़ लिया है गीता भागवत में उसके अनुसार मैच करना पड़ेगा और फिर देखेंगे हाँ ये बात तो इसमें भी कही है। तो फिर क्या करना चाहिए? प्रणाम करके बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए आपका, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे, करना चाहिए। और कोई बात नहीं मैच करती हो तब हरे कृष्ण, आप अपनी जगह हम अपनी, ऐसा करना चाहिए। वो लोग भी भाषण देने में कम नहीं, पैदा किसने किया तेरे को? हरे कृष्ण मंदिर वालों ने तेरे को इतना बड़ा पैदा कर दिया है क्या? हिला पिला करके इतना तेरे को, तेरे मलमूत्र धोए हमने, मैं खुद गीले में सोई तेरे को सूखे में सुलाया, आज तू हरे कृष्णा की गीत गाता है। होता है ऐसा, लेकिन हमें जब पता नहीं होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत है और फिर हम भटक जाते हैं। इसलिए इस संसार में हमें भटकना नहीं, जब हम भगवान से दूर चले जाते हैं तो पापों की दुनिया में फंस जाते हैं, और जब भगवान की ओर चलने लगते हैं भगवान की बात सुन करके तो भक्ति करते हुए भगवान की ओर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान की ओर जाना वो भक्ति कहलाता है। पाप में भी दो चीजें होती हैं, इतना समझ में आया? भगवान की ओर जाना, भगवान से दूर जाना। भगवान की ओर जाना वो क्या है? भक्ति। अच्छा कार्य और भगवान से दूर जाना पाप, बुरा काम। बुरे में भी दो काम होते हैं, भगवान से दूर जाने में भी दो तरह के काम होते हैं, अच्छे और बुरे। बुरे में भी अच्छे बुरे होते हैं, जैसे चोरी करना अच्छा काम है बुरा काम है? बुरा काम। चार लोग चोरी करने के लिए गए, 1,00,000 रुपया चोरी में मिला, एक पेड़ के नीचे बैठे, कहने लगे देखो भाई बंटवारा बराबर बराबर होना चाहिए। बंटवारा बराबर बराबर हुआ, सबको 25,000 दे दिए गए। तो उन्होंने जो बंटवारा बराबर किया, ईमानदारी से किया, वो काम अच्छा था बुरा था? तो वो लोग ईमानदार हैं या बेईमान हैं? उनको कहते हैं ईमानदार चोर। उनको क्या कहते हैं?
ईमानदार चोर।
बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना संसार में, बोले काम करो बस, ईमानदारी से किसी का बुरा मत सोचो, यही भक्ति है। नहीं, वो ईमानदारी से काम कर रहे, कोई भगवान की चर्चा नहीं करता, कोई गीता भागवत के उपदेश का पालन नहीं करता, वो ईमानदारी से काम करता है, वो ईमानदारी से उसको पगार दे देता है, सबका हिस्सा बराबर बराबर दे देता है। आपस में वो क्या कह रहे हैं? हाँ आदमी बहुत ईमानदार, लेकिन वो ईमानदार होते हुए भी क्या है? चोर है। भगवान की दी हुई सांसों को जिन तनु दियो ताहे विसरायो ऐसो नमक हरामी है। वो नमक हरामी जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कौन कुटिल होगा, कौन खल माने गधा होगा, कौन कामी होगा। भगवान ने सांस दिया, हम पलट के भी नहीं देख रहे। भगवान ने अन्न दिया, हम पलट के भी नहीं देख रहे। भगवान ने प्रकाश दिया, हम उनको धन्यवाद भी नहीं कर रहे। हम क्या हैं फिर? चोर। क्या हैं? आपस में कैसे रह रहे हैं? ईमानदारी से। फिर क्या हैं? ईमानदार चोर। तो ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से दिखने में अच्छे नजर आएंगे और ऐसा लगता है ये बहुत अच्छे लोग हैं, पुण्य काम कर रहे हैं, लेकिन वो पुण्य नहीं है, वो भी पाप का ही एक दूसरा रूप है। क्या है? पाप का ही। फिर भी अच्छे हैं, वो स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन नीचे गिरना पड़ेगा। और जो सीधा भगवान की ओर चलता है, आज्ञा का पालन करता है, भक्ति करता है, वो 14 लोकों को पार करके, इस ब्रह्मांड को पार करके भगवान के धाम वैकुंठ को चला जाता है। हमें ये वाला अच्छा काम करना है, बुरे के अंदर वाला अच्छा काम नहीं करना। जैसे 2 प्रकार के गोबर होते हैं, गोबर समझते? आसान है समझना, क्योंकि बहुतों के दिमाग में भरा ही रहता है। बुरा नहीं मानना आप लोग, आपको नहीं कहा जा रहा है। तो 2 तरह के गोबर होते हैं, एक सूखा गोबर, एक गीला गोबर। सूखा गोबर जल जाता है जल्दी, गीला गोबर जलता नहीं है, लेकिन थोड़े ही समय में वो भी सूखने वाला तो है। ऐसे ही संसार के जो बुरे काम है जिसके चलते व्यक्ति नरक में चला जाता है, संसार के जो अच्छे काम है जो मनमर्जी से डिसाइड करके किए जा रहे हैं बिना आज्ञा के, उसके चलते स्वर्ग में चला जाता है। तो स्वर्ग में जाने वाला गीला गोबर जो सूखे गोबर को जलते हुए देख करके कह रहा, जल, मैं नहीं जलने वाला। लेकिन सूखा गोबर कह रहा, चार दिन बाद तेरा भी सूखने का समय आ जाएगा, तब तेरे को भी जलना पड़ेगा। थोड़े ही समय में वो स्वर्ग से नीचे गिरेगा और फिर उसको भी नार की जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर में हम सभी को इन पापों से बचाना है, अर्थात अवज्ञा का जीवन से बचाना है, आज्ञा का जीवन स्वीकार करना है। उसके लिए गुरु पद आश्रय स्वीकार करना है, गुरु जी का आश्रय स्वीकार करना है। ये बात मन में आज हमेशा के लिए बिठा लो, और फिर गुरुजी के आदेश पर कोई झूठ बोलने के लिए भी कहा जाए तो भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। गुरुजी के सामने वाले व्यक्ति के सर पे ईंट मारो तो भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, मार देना चाहिए। और गुरुजी कहें कि लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को लगा गुरुजी आप कहने वाले थे ईंट मारो इसलिए मैंने पहले ही मार दी, ऐसा नहीं करना। मेरे को लगा, लगने की बड़ी भयानक बीमारी होती है, इसलिए गुरुजी कहते भैया आपस में लड़ो मत, शांति से बैठो, तब शांति से बैठ के भजन करना चाहिए। हनुमान जी शांति से भजन करते, जब कहा गया चलो लंका पर आक्रमण, बस बिना आक्रमण के ही जला करके आ गए। बड़े जब भक्त हो जाते हैं तो फिर भावनाओं को समझ लेते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिक। मन को समझने में समय लगता है, इसलिए थोड़े समय समर्पित होकर के जीवन जीना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा जीवन प्राय पापों से युक्त है और हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन इन जो ऑलरेडी पापी है उसका क्या समाधान किया जाए? बहुत सारा जीवन पाप में व्यतीत हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या समाधान किया जाए? हरे कृष्ण। गुरु महाराज इस बात की शिक्षा देते हैं कि हम सब पाप की गठरी सर पर लाद करके घूम रहे हैं। पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रोज, रोज भटक रहे हैं। और एक कहावत है ना, मनी अट्रैक्ट्स मनी, पीपल अट्रैक्ट्स पीपल, पैसा पैसे को आकर्षित करता है, लोग लोगों को आकर्षित करते हैं, पाप भी पाप को आकर्षित करता है। जब हृदय में पाप वृत्ति आ जाती है तो दूसरे पापों को आकर्षित करती है। इसलिए पाप में जीवन से जीते हुए हम कोई पुण्य आत्मा बनने वाले नहीं हैं, वो तो हमारा जीवन और पाप में चलता चला जाएगा। हमको ऐसा लगता आज मन के अनुसार काम करता हूं कल से सुधर जाऊंगा, वो कल कभी नहीं आती। ये वाली एकादशी खा लेता हूं, अगली वाली एकादशी चालू करूं, कभी नहीं होगा ऐसे। इसका पालन तत्काल करना होता है। इसलिए ये जो शरीर है ये बाकी जानवरों की तरह, जो बेबस हैं भगवान से दूर जाने के लिए, जिनको भगवान की जानकारी दी नहीं जा सकती, केवल और केवल 84 लाख शरीरों में केवल यही एक शरीर है जिसको हम भगवान की ओर ले जा सकते हैं। कोई भी ले जा सकता है, पुरुष भी ले जा सकता है, स्त्री भी ले जा सकती है। मीराबाई एक स्त्री तो थी, ना केवल उन्होंने अपने खुद के जीवन को भगवान की ओर इतना तेजी से लेकर के गई, बहुतों के जीवन में उपदेश देकर के उन्होंने परिवर्तन ला दिया, लेकिन वो भी ऐसे ही नहीं चली गई, उन्होंने भी शरण लिया। मीराबाई क्या कहती हैं इस मनुष्य शरीर के बारे में, वो कहती ये शरीर भी भाई भगवान की तरह एक अवतार जैसा ही, जैसे भगवान का अवतार बहुत दुर्लभ होता है, ऐसे ये मनुष्य शरीर भी बहुत दुर्लभ है। वो बड़े सुंदर शब्दों में समझाती हैं, कहती हैं नहीं ऐसो जन्म बार बार, 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 दर्श से जो पात टूटे से जम पात टूटे, जातन लागे वार, जातन लागे पुण्य प्रकट हुए, कहा जानू कछु पुण्य प्रगटे, कहा जानू कछु पुण्य प्रगटे। आप पीछे पूछते मानुषा अवतार, मान सावतार, मान सावतार, मान सावतार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं मिलेगा ऐसा जन्म बार बार, नहीं मिलेगा। ये मनुष्य, उन्होंने कहा ये मनुष्य शरीर साधारण नहीं है भाई, ये तो अवतार के जैसा है। ग्रह कैसा है, इसकी स्थिति बढ़ तो रहा है, क्षण क्षण करके बढ़ रहा है, लेकिन घट भी रहा है, मौत नजदीक आ रही है। और हम शिक्षा से रहित हैं इसलिए बर्थडे मना रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं और बर्थडे मना के खुशियां मना रहे हैं। बढ़त छिन छिन घटत पल पल, बढ़त छिन छिन घटत पल पल, बढ़त छिन छिन घटत पल पल, बढ़त छिन छिन घटत पल। जातन लागे बार, जातन लागे बार, जातन लागे बार, लागे बार, नहीं है सो जन संसार जिसको भव सागर कहते हैं, ये सागर साधारण नहीं है। इस सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कोई शरीर की सामर्थ्य नहीं है जो इस शरीर से इस भव सागर को पार कर जाए। अनंत ऊंचाई का ये सागर है। क्या कह रही है,
भव सागर अति जोर कहिए, भव सागर अति जोर कहिए, भव सागर अति जोर कहिए, भव सागर अति जोर कहिए। अनंत ऊंची धार, अनंत ऊंची धार, अनंत ऊंची धार, अनंत ऊंची धार, नहीं
अनंत ऊंची धार है। इसी को गीता में भी भगवान ने कहा, ये माया का जो समुद्र है, संसार है, ये दैवी गुणों से युक्त है। दैवी हेशम गुणमयी मम माया दुरतया, बहुत कठिन है। इस सागर को कोई पार कर सकता है कौन? मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आ जाएगा वो इस माया के सागर को पार कर सकता है। अब शरणागति की बात 10-20-50 कुत्ते बिठाकर की जा सकती है क्या? वृक्षों के साथ की जा सकती है क्या? पक्षियों के साथ की जा सकती है क्या? अरे देवताओं के साथ भी नहीं की जा सकती। देवताओं के जीवन में इतने भोग हैं कि भोगों में विरक्ति का आने की संभावना ही नहीं होती। केवल ये मनुष्य शरीर है जिसमें ऐसी चर्चा की जा सकती है, ये मौका है। इस शरीर में हम भगवान की शरण ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? पहला तो ये शरीर अवतार, दूसरा भगवान का कृपा से पार हो सकते हैं, भगवान का सहारा लेके। कैसे भगवान का सहारा ले सकते हैं बता रहे हैं। राम नाम का, राम नाम का बांध बेड़ा, राम नाम का बांध बेड़ा, राम नाम का बांध बेड़ा, राम नाम का बांध बेड़ा। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन हम जीवन को व्यतीत कर देते हैं भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले पाते। समझना होगा क्या समझा रही है मेरा भाई। राम नाम का बांध बेड़ा, राम नाम का बांध बेड़ा, उतर परली पार, उतर परली पार, उतर परली पार, उतर परली पार, ऐसा जन्म फिर नहीं मिलेगा। दो काम करने हैं, उसमें से एक तो भगवान ने ऐसे ही करके दे दिया। क्या? मनुष्य शरीर दे दिया। दूसरा सिर्फ एक काम बचा है, भगवान के नाम का आश्रय लेना है, बस भगवान के नाम की शरण लेनी है, बस और कुछ नहीं। ये दिमाग में बिठा लेना है, और कोई उपाय ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर नर उतर ही पारा। समस्या क्या होती है, हम लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, थोड़ा सा दो चार बातें भक्ति की सीख जाते हैं, दो चार दिन नाम जपते हैं, उसके बाद माला झोली प्राप्त हो जाती है, सीनियर डिवोटी बन जाते हैं। सीनियर बनते ही माला झोली फिर लटकी रहती है गले में, बस कभी घूमती नहीं है। चलते फिरते प्रणाम करते समय अंदर ही अंदर अपने आप घूम जाए, अलग बात है, फिर हम घुमाते नहीं, फिर फीडबैक चेंज करते रहते हैं बस अपने ड्रेस के आधार पर मार्केट में दिखाने के लिए, क्योंकि बिना झोली के मुफ्त का खाने को नहीं मिलेगा ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। नाम का आश्रय बढ़ना चाहिए। हम नाम का त्याग कर देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए मीराबाई कह रही है बहुत मजबूत बेड़ा बांधना इसका, दो चार नाम लेने से काम नहीं चलेगा।
राम नाम का बांध बेड़ा राम नाम बांध बेड़ा उतर परली पार उतर नहीं है सौगन
मीरा भाई ये नहीं कह रही कि ये मेरा मत है, मीरा भाई बता रही है ये गुरुजनों का साधु संतों का ऐसा कहना है।
साधु संत महंत ज्ञानी साधु संत महंत ज्ञानी साधु संत महंत ज्ञानी साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार चलत चलत करत पुकार चलत करत पुकार नहीं है सौ जन्म
मीरा भाई अपने बारे में बता रही हैं। हम तो दासता को स्वीकार कर चुके हैं, आज्ञाकारी जो बन जाता है वो दास बन जाता है, स्वामी बन के आज्ञा पालन थोड़ी होता है, वो तो आज्ञा देना चाहता है। फिर मीरा भाई अपने आचरण से सिखा रही हैं, क्या कह रही हैं?
दासी मीरा लाल गिरधर दासी मेरा लाल गिरधर दासी मेरा लाल गिरधर दासी मेरा।
ये सब करने की जरूरत क्या है? कह रही हैं अरे भाई
जीवना दिन चार जीवना दिन चार
ही दिन जीने को है, ज्यादा समय नहीं है किसी के पास, थोड़ा समय है, थोड़े समय भक्ति कर लिया जाए। संसार में इतना भटकते भटकते लाखों जन्म व्यतीत कर दिए।
दासी मेरा लाल गिरधर दासी मेरा लाल गिरधर जीवना दिन चार जीवना दिन चार Thank you.
खाली मीराबाई ने ऐसा नहीं कहा, सबने ऐसा कहा, यही शिक्षा दिया। गुरु महाराज वर्णन करते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों को मत भूलना, एक मौत को दूसरे भगवान। मृत्यु को याद रखेंगे तो घबराहट होगी, घबरा नहीं, लेकिन साथ में भगवान को याद रखेंगे तो घबराहट भाग जाएगी और जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। आज हमारी स्थिति क्या है, हम लोग भगवान को याद नहीं रखते, मौत को भी याद नहीं रखते, और दूसरे ही लोगों के द्वारा एक शिक्षा लेकर के जीते हैं। फिल्मी दुनिया के लोगों द्वारा शिक्षा लेते हैं, टीवी मोबाइल से शिक्षा लेते हैं। हमारे लिए गीता टीवी है, भागवत मोबाइल है, उससे शिक्षा लेते हैं। और वो कहते हैं, वो भी कहते हैं, गलत नहीं कहते, वो भी इन्हीं बातों को कहते हैं। वो कहते हैं जीने के हैं चार दिन, आगे आप सब जानते ही हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। मीरा भाई भी यही कह रहे हैं जीने के चार दिन। वो कहते हैं लाइफ इज आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। आचार्य कहते हैं लाइफ इज ए कैंडल, एलिमिनेटेड। ये जीवन प्रकाश के लिए मिला है, शास्त्रों का ये उद्देश्य है, अंधेरे में सड़ने के लिए नहीं मिला। यही महिमा कल नारद जी ने देखा कि कृष्ण कीर्तन से जो पशु पक्षी आदि भी थे, जो भगवान से दूर ही चलते ना, तो दूर जाने वाले जीव भी पवित्र हो गए। और कुमारा ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कोई मानव सदाई पाप करता रहता है, सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा। दुराचारी है, विमार्गी है, क्रोध कुटिल कामिन, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतिते। इस सप्ताह यज्ञ के द्वारा कलयुग में वो पवित्र हो जाता है। एक घटना सुनाते हैं, हे नारद, एक बार की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। ये आत्मदेव ब्राह्मण साधारण नहीं थे, सर्ववेद विशारद, वेदों के विशारद थे, भास्कर तेजस्वी सूर्य की तरह चमकने वाले थे, बड़े आत्मसंयमी थे और निष्णातों शास्त्रों में निष्णात थे, पारंगत थे, सब सिद्धांतों को समझने वाले थे। इनकी एक पत्नी थी, उसका नाम धुंधली था। धुंधली उसको कहते हैं जिसका आचरण होता है स्ववाक्य स्थापिका, हमारा वाक्य चलना चाहिए, हमारी बात रहनी चाहिए। अपनी बात को मनवाने वाली उसे धुंधली कहते हैं। हालांकि नित्य सुंदरी थी, सुंदर रूप था, अच्छा कुल था, सुकुलो उद्भवा, अच्छे कुल की थी, लेकिन उसके पश्चात साथ में बहु जल्पिका, बहुत बातें करने वाली थी। दूसरे लोगों के घर जा जाया करके लोकवार्ता में रत रहती थी, इसकी बात उसके पास, उसकी बात उसके पास। जो ऐसी स्त्रियां होती हैं, बोले हालांकि शूरा घर कार्य आदि में बहुत निपुण थी, लेकिन कृपणा कभी कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला भक्त आ जाता था तो दरवाजा बंद कर देती थी, हमारे पास है नहीं चाहिए गीता। दान धर्म की बात आती थी तो पति से पर्स छीन लेती थी, कुछ दान धर्म नहीं करना। कृपणा कंजूस थी, कला प्रिया, कला क्लेश में बहुत आनंद आता था। होते हैं कुछ लोगों के घर ऐसे होते हैं जहाँ आए दिन थोड़ी तू तू मैं होती रहती है, उसको वो लोग मनोरंजन कहते हैं, बीच बीच में मनोरंजन होता रहता है। अपनी बात को मनमाने में कभी पीछे नहीं रहती थी, हालांकि कहने के लिए लोग कहते हैं अच्छा आज क्या सब्जी बनाएं, तो कहता है कि फूल गोभी। क्या फूल गोभी? फूल गोभी। अच्छा तो लौकी बना। लौकी रोग ग्रसित है क्या? सब घर के लोग रोगी हैं क्या? लौकी बना। अच्छा तो फिर बैंगन बना। बैंगन वो भी कोई सब्जी? फिर क्या? मटर पनीर। फिर बना ले भाग्यवान वही बना ले, पूछना क्या था, तुम्हारी इच्छा ही मटर पनीर की थी, वही बना लो। तो पूछना तो एक नाटक होता है, बाकी करना वही होता है। इसे स्ववाक्य स्थापिका कहते हैं। क्या हुआ, परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, नित्य सुंदरी थी, लेकिन काफी समय व्यतीत होने पर भी कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो संतान के लिए आदमी बहुत प्रयत्न करता, दान धर्म आदि किया, दुनिया भर के बाबाओं के पास गए, हाथ दिखाया, सब कुछ किया, आधा धन कमाई का खर्च हो गया। बहुत बड़ा हवेली था इनका, कोई बाहर बच्चों को शांत रखे, आधा धन खर्च हो गया, फिर भी संतान नहीं हुई। दुखी होकर के आत्मदेव नामक ब्राह्मण शरीर छोड़ने के उद्देश्य से, अब क्या फायदा जीवन जीने का, नगर छोड़कर के दूर जंगल में चले गए एक सरोवर के किनारे। वहां क्या हुआ, वहां पर एक सन्यासी महाराज को देखा। अब ये सन्यासी को देख करके सोच रहे थे कूदूं कि नहीं कूदूं, मर ही जाता। आदमी सहारा ढूंढता है, इधर उधर देखता है, देखा एक सन्यासी आए हुए हैं, उनके पास जाकर के फूट फूट करके रोने लगे। सन्यासी पूछा अरे भैया क्या हो गया तुम, क्यों रो रहे हो? वो बता ही नहीं रहे और जोर जोर से रोए जा रहे। किसी की समस्या होती है तो आदमी पहले पूरा रो रो के सामने वाले के मन में बिठा देता है कि मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी तो ही चुप होऊंगा मैं। तो उन्होंने अरे तो रोते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी? बोलो क्या दुख है तुमको, हम तुम्हारी सहायता करें। बोले महाराज दुख तो क्या है, अब साधारण नहीं थे, विद्वान थे, तो कह रहे हैं दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे महाराज दुख ऐसे ही नहीं आता, दुख तो हमारे ही पाप कर्मों के कारण आता है। हम तो दूसरे के सर पे मटका फोड़ते, इसने मेरे को दुखी किया, ये मेरे को परेशान कर रहा है, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, ये व्यर्थ की सोच है। समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। लक्ष्मण जी ऐसा वर्णन करते हैं रामायण में, को न काहु कर सुख दुख दाता, को न काहु कर सुख दुख दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता, निज कृत कर भोग सब भ्राता, निज कृत कर भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, हमारे ही काम है जो घूम करके फल के रूप में कभी सुख के रूप में आ जाते हैं तो कभी दुख के रूप में आ जाते हैं। आत्मदेव नामक ब्राह्मण रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं, हे सन्यासी महाराज ये मेरे ही कोई पाप कर्म है जिसके चलते मैं इतना दुखी हूं। अरे बताओ क्या दुख है? बोले क्या बताना, मैं सोचता हूं अब मर ही जाता हूं। अरे भैया मरो मत, क्या चाहते हो? बोले मेरे संतान नहीं, संतान चाहता हूं। सन्यासी महाराज कहते भैया तेरे को क्या लगता है संतान आ जाएगा तो तुम सुखी हो जाएगा? नहीं, ये तो चेन बहुत लंबी है। जब संतान नहीं होती तो जब शादी नहीं होती आदमी सोचता शादी कब होगी, शादी से पहले भी सोचता है नौकरी नहीं लगी तो झोकरी कहां से आएगी, पहले नौकरी चाहिए फिर झोकरी चाहिए फिर संतान चाहिए, संतान भी हो जाए तो बोले संतान बोलेगी कब, और जब बोलने लग जाए तो फिर टेंशन होता है ये चुप कब होगा, इतना ज्यादा बोलता है। ये समस्याओं का अंत कभी होने वाला नहीं। और कुछ लोगों तो मैंने ऐसा देखा, मतलब आप आए नहीं मंदिर में क्या करें, बच्चे का एग्जाम था, मतलब इतना टेंशन बच्चे को नहीं रहता जितना माँ बाप को टेंशन रहता है, ऐसा लगता है वो फिर से एग्जाम देने जा रहे हैं बेचारे, बहुत टेंशन रहता है लोगों को। वो समझाते हैं भैया ये संसार में कहीं सुख नहीं है, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, ये संसार असार है दुख से भरा हुआ है। सुतम कस्य धनम कस्य, अरे बेटा हो जाने से क्या सुखी हो जाएगा कोई, धन पाने से क्या सुखी हो जाएगा। स्नेहवान ज्वलते अनिशम, सब लोग इन सब चीजों से चिपके रहते हैं और इसके चलते आसक्ति में स्नेहित होकर के जलते ही रहते हैं अंदर, चिंताएं सताती। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः, अरे इंद्र को भी सुख नहीं है चंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा बन जाओगे तो भी सुख नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या सुख है ही नहीं फिर? बोले नहीं, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवनः, सुख है विरक्ति में सुख है, संसार जो कि दुख का आलय है यहां सुख कहां है, यहां से वैराग्य ले लो। लेकिन जिसका कुंडी ऑलरेडी अटका हुआ उसको समझाना बहुत कठिन होता है, उसको जब जूते नहीं पड़ते ना तब तक उसको समझ नहीं आती। जैसे चींटा होता है ना, वो गुड़ को पकड़ लेता है, फंस भी जाता है गुड़ में पड़े पड़े, उसको हटाओ गुड़ से तो उसकी मुंडी अलग हो जाती है और पीछे का हिस्सा अलग हो जाता है, लेकिन गुड़ को छोड़ता है। इधर गुड़ खाने वाले भी गुड़ को नहीं छोड़ते, वो भी देखते हैं अब चीता तो मैक्सिमम तो निकल गया, खाली मुंडी मुंडी बची है, घोट डालते उसको, कहते इसमें ज्यादा कुछ हड्डी बड्डी नहीं हो खा लेते उसको। कुछ लोग कहते थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है वो, अब पता नहीं कैसा लगता है मेरे को नहीं पता, हाँ किसी का सुना हुआ बता रहा हूं मैं। खा जाते हैं बेचारे को, खोपड़ी खत्म हो जाती है उसकी, लेकिन गुड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। छोड़ना होता आज तक, हमने तो अभी तक कितने युग बीत गए, कितने बार सृष्टि की प्रलय हुई, कितने बार भगवान ने सृष्टि बनाया, इसी कल्प में कितने चतुर्युग बीत गए, अकल कहाँ है, नहीं हो पाई। बोले सुखम अस्ति विरक्तस्य, सुख तो है विरक्ति में लेकिन कहां समझ में आ रहा था। सन्यासी महाराज कहते शायद आगे चल के समझ में आ जाए, इस मनुष्य शरीर को मारो मत, तेरी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। अपनी भक्ति के बल से उन्होंने एक फल निकाला झोली में से, बोले ये फल अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारे समय आने पर संतान हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुआ ब्राह्मण आत्मदेव, लेकर के जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली की बहन साथ में रह रही थी उस समय, बोले देवी इसको खा लेना। बोले हाँ स्वामी हम इसे खाएंगे। बोले क्या होगा इसे? बोले इससे गर्भ धारण होगा और समय आने पर हमारे संतान हो जाए। अब उसको ये चिंता नहीं है कि संतान होगी कितनी अच्छी बात है, उसको ये चिंता है मेरा गर्भ धारण हो गया तो फिर पेट बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा और अचानक से चोर घर में घुस गए तो उन चोरों से मैं लड़ूंगी कैसे, और मेरे पास जो छुपाया हुआ धन है वो सब चोर ले जाएंगे। फिर मेरे लिए श्रृंगार आदि का सामान कहां से आएगा? आजकल तो पेटी बढ़ती जा रही है माताओं की, श्रृंगार का सामान बहुत विस्तारित रूप ले लिया। हम गुजरात में थे, मेहसाना में, वहां ड्रामा की तैयारी कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ऐसा बहुत बड़ा बॉक्स लेके आया, उसमें से कभी काला रंग, कभी नीला रंग, कभी कुछ। मैं बोला, ये आपको आया कहां से? बोले, मेरी पत्नी का है। सोच में पड़ गया, वो कहीं पेंटिंग का काम करती है क्या? इतना बड़ा, उसमें क्या क्या आइटम है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। आजकल मैं जब इसको पढ़ा तो मेरे को याद आया उस समय। बोले, सुख तो भैया विरक्ति में है, संसार में कहीं सुख नहीं। एक बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम ठनठन पाल था, घर वालों ने रख दिया ठनठन पाल। तो सोचे, जो भी ठनठन पाल बोलता तो उनको बड़ा बुरा लगता, विरक्तों को भी थोड़ा बुरा लगता है। कई बार लोग, ए भिखारी आ गया देखो, थोड़ा बुरा लगता है व्यक्ति। किताबें बांटने के लिए भक्त लोग जाते हैं, कोई व्यक्ति किताब नहीं लेता, थोड़ा बुरा लगता है, ऐसा लगता है हम भिखारी बन गए यार, पढ़े लिखे। तो ये ठनठन पाल भी ऐसा सोच रहा था, हम ये भिखारी का काम करेंगे क्या? तो सोचा नाम बदल देते हैं। तो सोचा अच्छा नाम किसका रखा जाए, पूछा जाए मार्केट में किसी का अच्छा नाम लगे। तो एक व्यक्ति को जो मर गया था, वो बेचारा जा रहा था, तो सोचा इसी का नाम ले लेते हैं, अब तो ये चल बसा। पूछा, भैया इसका नाम क्या है? बोले, अमर सिंह। तो सोच में पड़ गया, अमर सिंह मर गए, ये कैसा नाम है? बोले, ये तो खतरनाक नाम है, अब हम ले लेंगे तो पता चला हम भी टपक गए। रहने दो भैया। एक माता थी, वो गोबर के कंडे पाथ रही थी। माता को पूछा, तुम्हारा नाम क्या? बोले, लक्ष्मी। अरे बाप, लक्ष्मी होके कंडे पाथ रही है। एक व्यक्ति था, वो जरा भूस निकाल रहा था, गायों के लिए भूसा होता है, तो सर पे लेकर के गठरी बांध के लेके जा रहा, भैया तेरा नाम क्या? बोले, धनपाल। धन की पालन करने वाले भूस ढो रहे। फिर वो हताश हो गया, वो कहता है, अमरा है सो मर गए, भूस ढो में धनपाल, कंडा पाथे लक्ष्मी, हम चोखे ठन ठन पाल। उसको समझ आया कि भाई ठन ठन पाल में जो सुख है ना, मन लाग्यो मेरो यार चकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार चकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो। फकीरी का बड़ा अद्भुत सुख है, उसके चारों पैर पूंछ से आगे रहते, ना पीछे का कोई टेंशन ना आगे का कोई टेंशन। उसको कहते हैं कृष्णदास बिंदास। मन लेकिन लगे तब ना, मन ऐसे ही नहीं लगता। पहले तो वो भी दुखी हो रहा था ठनठन पाल सोच करके। आत्मदेव नामक ब्राह्मण को कहा, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवन। एकांत में जीवन जियो भाई, संसार में किसी का इतना सोचो मत, सब थोड़े दिन के लिए साथ में आए हैं, चल रहे हैं, बाकी पैदा कोई नहीं साथ में हुआ, न कोई जाएगा। ना कोई साथ आया था, ना कोई साथ जाएगा, कोई नहीं आया कोई नहीं जाएगा, जो यहां पाया यहीं दे चलेंगे, वस्तुएं भी यहीं जो पाई वो भी यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी। एकांत जीवन देखना, जीना सीखना चाहिए। सन्यासी का समझाया हुआ समझ में नहीं आया, आत्मदेव नामक ब्राह्मण वापस आ गए, धुंधली को फल दिया, धुंधली चिंता करने लगी, अरे मेरा रूप बदल जाएगा, मेरी सुंदरता चली जाएगी, ये झंझट कोई दूसरा ही सहे तो ज्यादा अच्छा है। उसकी बहन बोला, अरे तू क्या टेंशन लेती, गाय को खिला दे इसको, मेरे गर्भ है, मेरे संतान हो जाएगी, वो मैं तेरे को दे दूंगी, हाँ ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। समय आने पर उसने कपड़े भपड़े रख करके नाटक करती रही, पति को दिखाती रही, हाँ गर्भ धारण हो गया, बाकी कुछ ऐसा किया नहीं भगवान ने उसके साथ। समय आने पर उसकी बहन के संतान हुई और आत्मदेव नामक ब्राह्मण खुशी में से पागल थे कि अपनी पत्नी की बातों पर ऐसे विश्वास करते रहे। और समय आने पर उसने बहन का संतान लेकर के दिखा दिया, देखो मेरे संतान हो गया, और ऐसा लाड़ प्यार दिखाने लगी, नहीं नहीं इसका नाम तो मैं अपने ही नाम के ऊपर रखूंगी। क्या नाम रखना चाहती है? बोले इसका नाम धुंधली से हुआ है ना, इसलिए धुंधकारी, धुंध दिमाग में भरी पड़ी है ना, इसका नाम धुंधकारी होगा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन स्तनों में दूध तो आ ही नहीं रहा था। वो कहती है, देखो मेरी बहन के भी संतान हुई है, लेकिन उसका संतान मर गया पैदा होते ही, अब मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, आप कहो तो मैं उसको बुला लेती हूँ, थोड़ा धन दे देंगे उसको। बोले हाँ ठीक है, बुला। बहन को बुला लिया, बहन पाल पोस के बड़ा करने लगी। समय आने पर गाय माता ने भी फल खाने के कारण एक बच्चे को जन्म दिया। मनुष्य की आकृति का पूरा बालक सिर्फ कान गाय के जैसे। नाम आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे, अरे देखो भगवान कैसी कृपा करते हैं, कहां मेरे वृक्ष भी फल नहीं देते थे, अब गाय के भी मनुष्यों जैसी संतान हो रही है, साधु महात्मा की बड़ी कृपा है। भक्तों की ऐसी दया होती है कि असंभव संभव होने लगता है। उनकी दया से उनके संतान हुआ। कानों को देख करके उनका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण जी महाराज बड़े सुशील थे, बड़े शीलवान थे, गुणों की खान थे। धुंधकारी जैसा कि माँ थी उसकी, वैसा ही दुष्ट निकला। अपने ही वाक्यों को स्थापित करने वाला, अपनी बात मनवाने वाला, कलह प्रिय, उसके अंदर सारे दुर्गुण प्रकाशित होने लगे। गोकर्ण जी अपना भजन करते रहते और धुंधकारी ने इतना आतंक मचाया, ऐसा व्यभिचार करने लग गया, दुराचार मदिरा पान आदि सारे दुष्कर्म करने लग गया कि नाक में दम हो गया आत्मदेव ब्राह्मण के। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे क्या करूं, अपने पुत्र गोकर्ण की शरण में गए। गोकर्ण जी से पूछा, पुत्र क्या करूं मैं, ऐसी परिस्थिति है। गोकर्ण जी ने कहा, पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, ये संसार क्षण भंगुर है पिताश्री, वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य ले लो, रसिक बनकर के आप भक्त बन जाओ, कुछ नहीं है संसार में, क्या करें। और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों को, संसारी धर्मों को छोड़ करके भगवान का भजन करो। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक भागवत धर्म होता है, एक लोक धर्म होते हैं। लोक धर्म ऐसा होता है कि भाई कोई पुत्र है तो माँ बाप का ध्यान रखना, पति है तो पत्नी का ध्यान रखना, पत्नी है तो पति का ध्यान रखना, नाते रिश्तेदारों का ध्यान रखना, अतिथियों का ध्यान रखना, ये सब लोक धर्म है। भागवत धर्म है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा के लिए बने, इसलिए भगवान की सेवा करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान को समर्पित करना जीवन, भगवान के दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, ये सब क्या है, भागवत धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। जैसे हमने बताया, बाकी लोगों की बात तभी मानो जब भगवान की बात के अंतर्गत हो। ऐसा नहीं भगवान की बात को छोड़ के बाकी बातों को महत्व दे। ऐसे ही वो समझा रहे, धर्मम भजस्व सततम, निरंतर भगवान का भजन करो पिताश्री, त्यज लोक धर्मान, भूल जाओ पत्नी को, अपनी मां के बारे में ही बोल रहे हैं एक प्रकार से, परिवार को भूल जाओ, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। साधु पुरुषों का सेवन करो अपनी कामनाओं का त्याग करके। हम तो ऐसे साधु की शरण में जाते हैं जो हमें वीजा दे करके विदेश ले जाए क्योंकि इच्छा है। ऐसे सेंटर में जाना चाहते हैं जहां छोले कुलचे मिलते रहे बढ़िया। ऐसे प्रेसिडेंट के पास जाते हैं जो हमें वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाला है जाती। कामनाएं अंदर भरी पड़ी है। बोले कामनाओं का त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करो पिताश्री। लोक धर्मों का त्याग करना चाहिए। लोक धर्म मान ले जैसे आप मंदिर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, भगवान के सुबह 4:30 बजे दर्शन खुलने वाले हैं, रास्ते में कोई अतिथि मिल गया, घर के लोग मिल गए, जान पहचान के लोग मिल गए, बातें करने लग गए आपके साथ, तो आप उतने समय तक ही बात करो जिससे कि आप 4:30 से लेट ना हो जाओ पहुंचने में। और अगर लेट हो रहे हो तो उसको बोल दो हरे कृष्ण आप बाद में बात करेंगे और समय से पहुंच जाओ। और पहुंचे ही नहीं, इतनी बात लंबी हो गई, दूसरे दिन पूछा प्रभु जी आप कल आए नहीं थे मंगल आरती, क्या करें वो आदमी मिल गया था, वो बहुत बड़ा आदमी था या जरूरी आदमी था, घर का व्यक्ति था, रिश्तेदार था, उससे बात करने लग गए तो सारा समय वही खा गया। अर्थात आपने भागवत धर्म का त्याग कर दिया, लोक धर्म का पालन कर लिया। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का पालन करना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि जूते पड़ चुके थे ना। लोहा गर्म हो तो फिर हथौड़ा मारो तो शेप लेता है, ठंडे लोहे को हथौड़ा मारो तो शेप नहीं लेता। आघात हुआ, त्याग कर दिया, जंगल में जाकर के भजन किया और भगवान की प्राप्ति की। अब तो धुंधकारी और आजाद हो गया, माँ के पास सीधा डंडा लेकर के चढ़ बैठा, जो कुछ भी है गहने वगैरह सब निकालो। माँ भी दुखी हो गई, लेकिन माँ ने कभी भजन नहीं किया था शुरू में। पिताश्री के अंदर भक्ति वृत्ति थी, माँ के अंदर बिल्कुल भी वृत्ति। समस्या उसके सामने भी वही आई जो पिता के सामने थी, लेकिन उसने क्या किया, दुखी होकर के कुएं में छलांग लगा दिया और देह का त्याग कर दिया, नरक की गति को प्राप्त हुई। संसार में जिन लोगों को भक्तों की संगति प्राप्त नहीं होती, जिनके जीवन में कभी भजन साधन नहीं होता, उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो ऐसा ही उपाय करते हैं, भटक जाते हैं, कल्याण नहीं कर पाते। इधर धुंधकारी और आजाद हो गया, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को लेकर के घर में आ गया। अब वेश्याएं तो धन मांगती थी, धन उसने एक बड़े राजा के यहाँ डाका डाल करके लाया, बहुत सारा धन लेकर के आया। सारी वेश्याएं सोचने लगी अगर इस धन का पता चल गया तो राजा इसको भी दंडित करेगा, हम भी पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा इस व्यक्ति को ही खत्म कर देते हैं। पांचों वेश्याओं ने मिलकर के उसको मदिरा पान आदि करा करके नशे में धुत कर दिया। और बेचारा पड़ा हुआ था, उसके गले को रस्सी बांध करके दोनों साइड से वेश्याओं ने खींचा, इतनी ताकत लगाया फिर भी मरा नहीं वो। अच्छी तरह से उसके हाथ पैर आदि बांध दिए, उसके मुंह खोल करके उसमें अंगारे डाल दिए और अंगारे डाल करके उसको मार डाला। जब वो मर गया तब घर में ही खड्डा खोद करके उसको दफना दिया। और 2-4 दिन रहते हुए अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगे, अरे तुम्हारे वो पति महाराज कहाँ हैं आजकल? बोले परदेश गए हैं थोड़ा धन कमाने के लिए। एक आधा हफ्ता आपस में लोगों के साथ व्यवहार किया और अचानक से सारी वेश्याएं गायब हो गई। इधर क्या हुआ, गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई अब नहीं रहा, साधारण नहीं थे, महात्मा थे, गया में थे। गया में उन्होंने उसके नाम से पिंड दान किया। वापस आए, बहुत विशाल हवेली थी, घर में जाने लगे। गांव के लोग बोले अरे इसमें कोई जाता है, क्योंकि खाली पड़ी थी, हर व्यक्ति घुसकर के कब्जा करना चाह रहा था, जो जाए वही मर जाता था बेचारा। बोले महाराज इसमें मत जाओ, मर जाओ। बोले मेरा ही घर है ये। अंदर घुसे, अलग अलग रूप बना करके, कभी बैल का रूप बनाता, कभी भैंसे का रूप बनाता, कभी मगरमच्छ का, कभी सर्प आदि का रूप, भयानक भयानक रूप बना करके बार बार इनके ऊपर आक्रमण करने लगा। इन्होंने जल के छींटे मारे, रोने लग गया, बोलने की शक्ति आई। बोले अरे भैया कौन हो तुम? बोले भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अच्छा ऐसी दशा? बोले हाँ मैं प्रेत बन गया हूं, मेरे को मार डाला था। तो तुम्हारे नाम का तो मैंने पिंडदान पहले ही वहां कर दिया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? बोले ऐसे सैकड़ों पिंडदान भी तुम गया में जाकर के करोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला। मैं साधारण पापी नहीं था, बहुत भयानक पाप कर्म किया। तो भाई क्या करूं? बोले कुछ करो, मुझे यहां बहुत कष्ट है, मेरी रक्षा करो। अब गोकर्ण जी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। नगर के विद्वानों के साथ चर्चा किया, सब कहने लगे भाई हम तो कोई उपाय नहीं जानते, प्रायः संसार में पिंडदान किया जाता गया में जाकर के तो भी इसका उद्धार नहीं हुआ, तो अब क्या उपाय कौन बता सकता है? सृष्टि में ये ज्ञान तो सूर्यदेव को दिया था, अब तो सूर्यदेव ही बता सकते हैं। गोकर्ण जी इतने तपस्वी थे, सूर्यदेव को रोक दिया, प्रार्थना करने लगे मेरे भाई के उद्धार के लिए कोई निमित्त बताइए। सूर्यदेव ने कहा भागवत का आश्रय किया जाए। गांव के लोगों को एकत्रित करके सभी से चंदा आदि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके सारी व्यवस्था बनाया और भागवत की कथा का आयोजन किया। गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने लगे, सारे गांव के लोग सुनने लगे। पास में ही एक बांस खड़ा था, उसकी गांठ में आकर के धुंधकारी भी बैठ गया। गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे, एक एक दिन की समाप्ति पर एक एक बांस की गांठ फट जाती थी। देखो भागवत का कैसा प्रताप है, जब सूखा हुआ बांस फट सकता है तो हमारा हृदय नहीं फट सकता, अर्थात हमारा दूषित हृदय शुद्ध नहीं हो सकता क्यों? अवश्य हो सकता है। इस प्रकार से सातवें दिन तक कथा आगे बढ़ी। सातवें दिन की कथा की समाप्ति पर बांस फटा और आकाश से सुंदर भगवान का वैकुंठ के दूतों के साथ विमान आया। नंद सुनंद आदि भगवान के विष्णु दूतों के साथ विमान आया, जय जयकार होने लगी। इधर बांस फटते ही धुंधकारी धुंधकारी नहीं बना, चतुर्भुज नारायण के जैसा भगवान के पार्षद होते हैं वैसे ही, वैसा ही सुंदर मेघ श्याम के जैसा स्वरूप धारण करके पीताम्बर आदि श्रृंगार आदि के साथ प्रकट हुआ। भैया गोकर्ण के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लग गया, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नारकी जीवन से बच गया, धन्य है साधु साधु। विमान में चलने लगे। गोकर्ण जी देख रहे भैया ये कथा केवल इसी के लिए थोड़ी थी, तो सबके लिए हो रही थी। विष्णु दूतों को रोका, प्रभु ये कथा तो सबने सुनी, विमान एक ही क्यों आया? बोले बाकी लोगों का कोई आपने ध्यान नहीं रखा, बाकी लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए था। बोले नहीं कथा सुनी तो सबने, लेकिन फल अलग अलग होगा। बोले अलग अलग फल क्यों? क्लास में बच्चे सब पढ़ते हैं लेकिन अलग अलग मार्क्स आते हैं। जैसा जिसका ध्यान वैसा फल। वो कहते अदृढ़ चहृतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जो ज्ञान व्यक्ति धारण करता और उसमें दृढ़ता नहीं रखता कि नहीं मुझे ये पालन करना ही है, उसका ज्ञान खत्म हो जाता है। जैसे हम सबको ज्ञान है कि नाम जपना चाहिए, लेकिन इस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, इसलिए नाम जपने की हमारी जो वृत्ति है वो चली जाती है, दिमाग से भी बात निकल जाती है। ऐसे ही प्रमादेन हतम श्रुतम, जब आदमी प्रमाद से कथा सुनता है, अपने मद में बैठा बैठा ध्यान नहीं देता, उससे उस कथा का फल उसे नहीं मिलता। इसलिए इन सभी लोगों ने ध्यान से कथा नहीं सुनी, जैसी कथा धुंधकारी ने सुनी। केवल श्रवणम ही नहीं, उसके बाद उसका चिंतन भी करना होता है। धुंधकारी सुनता था, खाने पीने का कोई उसके लिए समस्या नहीं थी क्योंकि खा ही नहीं सकता था, इसलिए भूखे प्यासे उसको मजबूरी में केवल चिंतन ही करना रहता था, सोचता रहता था ध्यान करता था कथा का। हम लोग तो क्लास से यहां से बाहर निकलेंगे ना, एकदम से एवेपोरेट हो जाती है सारी बातें दिमाग से बाहर। कुछ लोग उठ के झाड़ के चले जाते हैं, कुछ नहीं साथ में जा पाता, इसलिए फल नहीं प्राप्त होता। तुरंत उन्होंने फिर सभी लोगों को फिर से कथा सुनाया, और जब सबने देखा ही था, आंखों के सामने विमान आया, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। फिर से कथा हुई, फिर से ध्यान से सुना गया, और जब ध्यान से सुना तो सबके लिए विमानों की लाइन लग गई। इस बार वैकुंठ से एक एक व्यक्ति के लिए एक एक विमान आया, लेकिन भगवान सोच रहे हैं ये गोकर्ण जी के लिए क्या लाया जाए। गोकर्ण जी के लिए स्वयं भगवान आए, और आकर के भगवान ने उनको गले लगा लिया। भगवान कहते धन्य हो गोकर्ण तुम, और गोकर्ण जी की ऐसी दया हुई कि उस समय उस नगर के पशु पक्षी जितने भी जीव थे सबका उद्धार हुआ। जैसे भगवान राम जब साकेत धाम को गए तो उन्होंने सारी अयोध्यापुरी का उद्धार किया, ऐसे ही गोकर्ण जी ने सारे नगर का उद्धार कर दिया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। तो ये कथा चार कुमारों ने सुनाया कि देखो पापी से पापी व्यक्ति भी इस भागवत की कथा से कैसे उद्धार प्राप्त कर लेता है। इधर चार कुमारों को नारद जी पूछने लगे कि ये कथा की विधि विधान क्या है। बोले इसका मुख्य रूप से विधान है कि ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो कि भक्त हो भगवान का। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रहा। बोले विरक्त तो जो भगवान कथा करने वाला जो व्यक्ति है वो परम विरक्त तो होना चाहिए। वैष्णव भगवान का भक्त होना चाहिए। विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए, उसके अंदर ब्राह्मणत्व होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वेद शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से आश्रय लेने वाला होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो ऐसे सुंदर दृष्टांत देते आना चाहिए कि कठिन से कठिन बात को भी बहुत अच्छी तरह से आसानी से छोटे बालक को भी समझा सके। धीरो हृदय में धैर्य होना चाहिए। वक्ता कार्यो अति निष्प्रहा अति निष्प्रहा हृदय में कोई आकांक्षा ही नहीं होनी चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें बोलना आसान है। हम भी आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन भैया परीक्षा होती है, सबके जीवन में परीक्षा होती है। वैष्णव तो वो है कि जो गीता के अनुसार भगवान कह रहे हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम न मन्यते अधिकम ततः। देखो संसार में कोई व्यक्ति किसी चीज को छोड़ता कब है? किसी चीज को तब छोड़ता है जब उससे या तो बड़ी चीज मिले या उस वस्तु के छिन जाने से भी ज्यादा बड़ी चीज कोई छिन रही हो, अर्थात या तो कोई इससे भी बड़ा लाभ या इससे भी बड़ा घाटा। लेकिन भक्त जो होता है उसके जीवन में भक्ति से बढ़कर कोई और बड़ा लाभ नहीं होता। वो ये नहीं सोचता अरे तेरे को पीएमओ से ऑफर आया है, नहीं ठुकरा देता। वो सोचता ये ऑफर से बड़ा ऑफर क्या हो सकता है, या उसको अचानक से तेरे घर में आग लग गई। आग लग गई तो क्या हुआ? इस नाम जप को छोड़ करके जाना मतलब ये ज्यादा घाटा है। वो तो लग गई सो लग गई, क्या करना। अब ये बात कहां हमारी खोपड़ी में घुसती है। अति निष्प्रहा
ऐसा अति निष्प्रहा कि इससे बड़ा कोई घाटा नहीं समझता। मां मर गई तो क्या किया जाए, पिता मर गए तो क्या हुआ, अरे सारी सृष्टि मर जाए तो भी हम भजन को छोड़ के नहीं जाएंगे। आजकल लोग साधु बनते ब्रह्मचारी बनते कई बार फोन से घर वालों के हालचाल लेते रहते हैं, घर पे कुछ हो गया, अरे कोई देखने वाला नहीं था प्रभु जी, इसलिए मैं छोड़ छाड़ के वापस चला गया। अरे भक्ति का घाटा जो हुआ उसका क्या, उसकी समझ ही नहीं। एक भक्त उसको कहते हैं जो इससे बड़ा कोई दूसरा घाटा है नहीं मानता। प्रभुपा जी को पता चला कि उनकी फैक्ट्री में चोरी हो गई है, प्रभुपा जी हंसने लग गए, कोई बात नहीं, कोई घाटा नहीं, कोई बड़ा लाभ नहीं, ये भक्ति है। इसलिए गाना तो अलग बात है, हम भी गा ही रहे, गा के जीव अंदर चली जाती है फटाक से, लेकिन जब ऑफर आते हैं ना, चलो चलो सब कोई कहे बिरलो पहुंचे कोई, कोई कोई चल पड़ता है इस मार्ग पर, रास्ता सबके लिए खुला है, गिर क्यों जाता है। एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी दो, एक कंचन अर्थात सोना अर्थात पैसा, पैसा लुढ़केगा जीवन में, आएगा परीक्षा होगी तब देखा जाएगा तुम छोड़ पाते हो कि नहीं। एक कामिनी सुंदर स्त्रियां आएंगी, जरूर आएंगी, यहां की स्त्रियों में नहीं लुढ़कोगे तो स्वर्ग से स्त्रियां आएंगी, स्वर्ग से, उससे पहले तो रसिया की स्त्रियों में ही लुढ़क जाते हैं। और अमेरिका के अगर डॉलर भी साथ में आ गया, कॉम्बो पैक, स्त्री भी आ रही है डॉलर भी आ गया तो लुढ़क गया। दुर्गम घाटियां हैं, यहां से भी बचोगे तो स्वर्ग से आएंगी, वहां से भी बचोगे तो ब्रह्मलोक से भेजी जाएंगी, परीक्षा तो होगी। अभी हमारे पास है ही कुछ नहीं तो इसलिए गा दे रहे, लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार। जीवन को भगवान के चरणों में ही सौंपना चाहिए, इसी को भागवतम में स्थापित किया है और कहा यह भागवतम साधारण नहीं है, समस्त शास्त्रों का निगम कल्पगत निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये सारे शास्त्रों का गलित माने पका हुआ फल है। सुख मुखात भगवान के ही स्वरूप जो सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी साक्षात भगवान ही है। कल हम बता रहे थे सबके हृदय में वास करने वाले उज्जवल नीलमणि में सनातन गोस्वामी बताते हैं ये सुख का और स्वरूप क्या है, बोले ये राधा रानी के तोते हैं। गोलोक धाम में राधा रानी इनको दाहिने हाथ पे बिठाती हैं, हथेली पर, राधा रानी का दाहिना हाथ इनका सिंहासन है और इसको कृष्ण नाम रटाती है, तोता कृष्ण बोलो वो कृष्ण नाम रटता है, जैसे ही कृष्ण नाम रटता है राधा रानी इतना प्रेम में विवल हो जाती है, उसकी चोंच को चुम्बन करने लगती है, चूमने लगती है, दूसरी हथेली से चुम्बन करके उसके ऊपर आशीर्वाद देती है। वो तोता सोचता है ये कृष्ण नाम बोलने में इतना अच्छा लग रहा है और राधा रानी के कानों में जा रहा है, तो राधा रानी इतनी बेहल हो जा रही है कि मेरे को इतना प्रेम कर रही है। साक्षात कृष्ण कितने आनंदकारी होंगे। उड़ के चला जाता है, बरसाने में जा नंद गांव में जाता है, वहां नंद भवन में जाकर के कृष्ण का दर्शन करता है। कृष्ण का दर्शन करता है, देखता है, फिर सोचता है यार वो आनंद नहीं आ रहा है जो वहां आ रहा था। ये साक्षात कृष्ण में वो मजा नहीं है जो कृष्ण के नाम में, जो राधा रानी के साथ रहते हुए जो आनंद आ रहा था। उड़ के वापस चला आता है, राधा रानी के हथेली पर बैठ जाता है, दोबारा नहीं जाऊंगा अब दर्शन करने के लिए। राधा रानी का त्याग नहीं करता। देखो कृष्ण नाम इतना अपने आप में आनंदकारी, हमको क्या लगता है कृष्ण नाम रटेंगे ना, रटते रटते एक दिन कृष्ण के दर्शन होंगे, उसमें ज्यादा आनंद आएगा। नहीं, सनातन गोस्वामी के सामने कृष्ण खड़े हैं और ये कृष्ण का नाम ले रहे हैं। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं अरे यार थोड़ा साइड में हो जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है, जप करने में डिस्टर्ब हो रहा है। सनातन गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं, क्या कृष्ण का स्वरूप आनंदकारी नहीं है? वो तो आनंद घन स्वरूप है। तो भी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि नहीं, मेरी जीवा पर जब ये कृष्ण नाम लेता हूं, नृत्य करता है, तो ऐसा लगता है एक ही जीव क्यों है, हजारों जीव होनी चाहिए। और फिर ऐसा लगता है जब ये कानों में जाता है तो दो ही कान है बस, हजारों कान होने चाहिए। और फिर अंदर जाता है तो बोले एकदम से बांध लेता है और इसके बंधन में ऐसा आनंद आता है कि ऐसा लगता है मैं बंधा ही रहूं बस, ये पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है मुझे, ये नाम ऐसा है। इसलिए कृष्ण जैसे वो बैट्समैन कहता ना, सामने स्क्रीन को थोड़ा साइड में लाओ, डिस्टर्ब कर रहा है व्यक्ति, बैटिंग करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे कृष्ण साक्षात हैं, उनके हाथों से खाते हैं, सेवा करते हैं। उन कृष्ण को कह रहे नहीं थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा भजन कर ले तुम्हें। तोता कहता है कि इस कृष्ण नाम में इतना आनंद है और सच्चाई है, नाम भगवान से बढ़कर है। गुरु महाराज कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके नहीं राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए बड़ा हरि का नाम, हरि वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम, पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। देखो जब पुल बनाया जा रहा था, पत्थर तैर रहे थे, मंदोदरी कहने लगी रावण को, सुना है पत्थर तैर रहे, अब तो पुल बनने वाला है, आक्रमण होने वाला है, कितने शक्तिशाली है राम। रावण ने जैसे ही सुना हंसने लग गया जोर जोर से, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूं, पत्थरों को तैराना कौन सी बड़ी बात है। उसने पत्थर लिया, बोली तैरा के दिखाओ, पत्थर लिया फेंका समुद्र में और पत्थर तैरने लग गया। मंदोदरी हैरान हो गई, बोले सच बताओ कैसे तैर रहा है ये पत्थर। बोले मैंने पत्थर को फेंका और बोला तेरे को राम की सौगंध अगर नहीं तैरा तो। हमसे अच्छा तो रावण भी था, कम से कम उसको विश्वास था, हम लोग तो गा रहे लेकिन जीवन में नहीं। रात सोने में नहीं व्यतीत होती, भागवत तो कह रही है कि तुम्हारा जीवन रात्रि सोने में व्यतीत होता है, हमारा तो दिन भी सोने में ही व्यतीत होता है, रात कम पड़ जाती है सोने से। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि पाना, हरि से नाम है, ये भगवान से भी बढ़कर है। सुखदेव जी राधा रानी के हाथ पर आकर के उस नाम का आश्रय ले रहे हैं। एक दिन राधा रानी को, जो कि कृपामयी है, आंखों में अश्रुओं के साथ चिंता के अंतर्गत देखा। चिंतातुर देख करके सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, तोता पूछता है, हे राधे, हे वृंदावनेश्वरी, आप चिंतित क्यों हैं? क्या बात है, हम कोई आपकी सहायता करें? राधा रानी कहती हैं, जो भौतिक संसार में जो जीव पड़े हुए हैं, मुझे उनकी चिंता सता रही है, उन जीवों का उद्धार कैसे होगा। राधा रानी को रोते हुए देख करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुख जी कहते हैं, हम जाएंगे उन जीवों के लिए, आप बताइए क्या करना है। बोले नीचे जाकर के उन सभी को एक कृष्ण का रस, ये जो रस आलयम है, ये जो भागवत है, ये ले जाकर के मिलाओ। राधा रानी के उस आदेश पर वही सुख इस संसार में आते हैं और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये उन्हीं सुखदेव गोस्वामी के द्वारा अमृत में ये रस है, फल है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविकः, ये ऐसा भागवत रस है कि जो जीवन मुक्त है, जो कि बंधन में नहीं है, जो मुक्त पुरुष हैं, वो भी इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो भी इतने आनंद में डूब जाते हैं इसको पाने के लिए कि दौड़ दौड़ करके आते हैं। और ऐसा ही हुआ राजा परीक्षित को लेकर के। बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की। वही सुख कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण एक दिन मन में सोचते हैं, ये राधा रानी सखियों के साथ ऐसा कौन सा आनंद प्राप्त करती है मुझे लेकर के, देखना चाहते हैं। तो तोते का रूप बनाते हैं और राधा रानी के कुंज में जाकर के बैठ जाते हैं। राधा रानी छटपटाती हैं, कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे, सारी सखियां इंतजार कर रही हैं। और कृष्ण तोता बन करके वहाँ बैठे हुए हैं और वो कृष्ण नाम रटना चालू करते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। राधा रानी उस तोते को देख करके एकदम से पकड़ के गले लगा लेती है। राधा रानी का कृष्ण नाम सुनते ही कृष्ण विरह शांत हो जाता है। ये वही सुख है जो स्वयं श्री कृष्ण है। सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि ये कथा हमने सुखदेव गोस्वामी से श्रवण की थी। वो सुखदेव गोस्वामी जो कि साक्षात श्री कृष्ण है, राधा रानी के तोते हैं और उनकी चोंच लगने से ये फल कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया। और ये कैसे प्राप्त हुआ? परंपरा से प्राप्त हुआ। इसलिए ये बिना गुठली के बिना छिलके के बड़ा अद्भुत फल है और ये इतना ऊंचाई से आया फिर भी फटा नहीं, सबके लिए सुरक्षित है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि जब ये वार्ता सुन रहे थे तो पूछने लगे कि सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को ये वार्ता किस प्रकार से सुनाई, जिसमें कि राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किए। इधर सूत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि आप हमें सब कुछ विस्तार से बताओ कि भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, भगवान धरा धाम छोड़ करके चले गए तो फिर धर्म ने किसकी शरण लिया है, भगवान के जाते ही हमने सुना कि कलयुग का प्रवेश हुआ तो कलयुग का जब प्रवेश हुआ तो फिर राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रवेश कैसे दे दिया, उसके कारण क्या क्या हुआ, सब आप विस्तार से बताइए। इस प्रश्न को सुनकर के सूत गोस्वामी कहने लगे सबसे पहले हे ऋषियों आप ये समझो कि धर्म होता क्या है, धर्म क्या चीज है, धर्म की परिभाषा समझाने, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर आगे की कोई वार्ता हम लिंक नहीं कर पाएंगे। समझाने लगे धर्म क्या है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। हे ऋषियों धर्म क्या है, धर्म तो एक ही है, जो परम धर्म है वो क्या, भगवान के चरणों में भक्ति, अथोक्षज भगवान जो कि कभी पतन को प्राप्त नहीं होते, जिनकी सत्ता शाश्वत बनी रहती है, उन भगवान के प्रति जो भक्ति है वही परम धर्म है। उसी परम धर्म की प्राप्ति हम सबको करनी चाहिए। और वो भक्ति कैसी हो, भक्ति मतलब सेवा, वो कैसी अहेतु की, उसके पीछे हेतु कोई नहीं हो, ये नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो पत्नी नहीं मिल रही इसलिए भक्ति कर रहे हैं, संतान नहीं आ रही इसलिए भक्ति कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, बीमार हो गए इसलिए भक्ति कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर कोई व्यक्ति चला गया उसको वापस लाना है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, नहीं, भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। देखो कोई व्यक्ति कारण से भक्ति करता है ना उसको बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। पहला घाटा, संसार की हमने बताया सबसे बड़ी साध्य वस्तु तो भगवान ही है। अब ये शरीर क्या है, भगवान को पाने के लिए एक साधन, ये शरीर क्या है, भगवान को पाने के लिए एक साधन। अब इस शरीर जिसको मकान में रखा जाता है तो मकान क्या है, भगवान को पाने के लिए एक साधन। हमें शरीर में बुद्धि प्राप्त है ये किस लिए, भगवान को पाने के लिए एक साधन। हमारे पास पैसा है वो भगवान को पाने के लिए एक साधन। साधन छोटी चीज है या साध्य छोटी चीज है, साधन छोटी चीज है साध्य बड़ी वस्तु है। जो हमें चाहिए ये सब चीजें लगा करके, अमीर से अमीर आदमी या गरीब से गरीब आदमी अपने पुत्र की शादी के लिए कितना पैसा खर्चा कर देता है, साध्य वस्तु क्या है? बच्चे का विवाह, पत्नी आनी चाहिए उसकी, पैसा खर्चा हो जाए चलेगा। तो पत्नी बड़ी चीज है ना, जिसके चलते उसने सब साधन अपनाए। ऐसे ही भगवान को पाने के लिए बाकी संसार का सर्वस्व ये सब क्या है? साधन। और हम क्या करते हैं? संसार की वस्तुओं को पाने के लिए भगवान को यूज करते हैं। तो भगवान क्या बना दिया हमने? साधन। और लक्ष्य क्या बना लिया? संसार की चीजें। कैसी बुद्धि खराब हो गई, बड़ी चीज को छोटा बना दिया और छोटी चीज को बड़ा बना दिया। समझदारी से काम लेना चाहिए था। एक चमकता हुआ पत्थर एक महात्मा ने अपने शिष्य को दिया, बोले इसको दिखा के लाओ लोगों के बीच में। वो सब्जी वाले के पास गया, भैया ये पत्थर है देखो जरा। उसने देखा, बड़ा बढ़िया चमकता हुआ पत्थर है। एक काम करो, दो मूली ले जाओ, ये पत्थर दे दो। बोले नहीं नहीं बेचना नहीं है, वापस दे दो। वो किराने वाले के पास गया, उसको ले जा करके देता है, देखो भाई बढ़िया पत्थर है। एक काम करो, 2 किलो बोरा ले जाओ। बोले नहीं नहीं देना नहीं, वापस दे दो। वो फिर एक बड़े शोरूम वाले के पास गया, उसने देख बड़ा बढ़िया गिफ्ट आइटम है, एक काम करो 1000 रुपये ले जाओ इसके लिए। बोले नहीं 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 देना नहीं, वापस दे दो। वो गया सुनार के पास, देखा ये तो बड़ा बढ़िया पत्थर है, नग है ये तो, इसको तो अंगूठी में लगाया जा सकता है, 10,000 रुपये ले लो इसके लिए। नहीं नहीं देना नहीं, वापस दे दो। वो फिर जौहरी के पास गया, उसने देखा ओ तो हीरा है, 1,00,000 रुपये का है, 50,000 ले लो। नहीं 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 देना नहीं, वापस दे दो। राज जौहरी के पास गया, उसने देखा अरे ये तो रत्न है, 1,00,000,000 रुपये का है, अनमोल कीमत है, 10,00,000 ले लो इसका। बोले नहीं नहीं देना नहीं है, वापस दे दो। ले जाके गुरुजी के पास गया, महाराज तो बड़ा चमत्कारी पत्थर है आपका, लेकिन हम उस जगह पे होते, सब्जी वाले के पास जाते, 2 मूली मिलेगी बस, हाँ तो और क्या मिलेगा, थोड़ा 1 मिर्ची भी डाल दे, मिर्ची भी डाल दिया उसने, ले 1 मिर्ची ले ले, थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दे, धनिया पत्ता भी डाल दिया, 1 नींबू डाल दे, छोटा सा ही दे दे 1 नींबू, लेकर के फटाक से आके कटिंग करके मूली की चाट बना करके खा जाते। गुरुजी बता के भी भेजते हैं ना, इसको बेचना नहीं, बोले दूसरा गुरु कर लेंगे। हम सबकी ऐसी दशा है। अरे उस पत्थर से क्या नहीं प्राप्त हो सकता था उसको, लेकिन उसको साधन बना दिया उसने, जबकि सब कुछ बेच करके उस पत्थर को नहीं प्राप्त किया जा सकता था। बाकी सब साध्य वस्तु साधन थे, वो साध्य था, लेकिन बुद्धि का छोटापन ओछापन खोचड़ा दिमाग हम सबका नीचे गिरा देता है। उन्होंने कहा भाई साध्य नहीं बनाना चाहिए संसार की वस्तुओं को, अहेतु की भक्ति करनी चाहिए, कोई कारण नहीं। नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी ने डांट दिया था, प्रभु मैं तो संसारी हूं, आप कैसे ईश्वर हैं, कैसे भगवान हैं? आप कह रहे हैं कि तू संसार की कोई चीज चाहिए तो मांग ले, आप ऐसे दयालु प्रभु तो नहीं हो सकते। संसार तो दुखों का घर है, यहां को दुखालय आप ही ने घोषित किया है, यहां की हर वस्तु दुखदायक है, आप कह रहे हो कि इनमें से कुछ मांग ले, आप दयालु कैसे हो सकते हैं? प्रहलाद जी कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने बेवकूफ हैं कि भगवान से वस्तु मांगते। इसलिए बहुत बड़ा घाटा है, सबसे पहला घाटा है कि हम उन वस्तुओं को मांगते जो तुच्छ है, मूली की तरह है। गाना सहज है, लाख ना करोड़ ना हजार जाए। महाप्रभु ने यह सिद्धांत दिया, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्तेर अहेतुकी त्वयि। अहेतु की भक्ति चाहिए हमें, ऐसी भक्ति कि हम भक्ति करें तो सही लेकिन उसके बदले में कुछ ना चाहे, ऐसी भक्ति करनी पड़े। तो कहते हैं कि साध्य साधन बदल जाता है, कितना बड़ा घाटा है। कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने से वो वस्तु मिल जाती है, जैसे ही वस्तु मिल जाती है हम फिर भगवान को छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं वस्तु मिल गई अब भक्ति करने की क्या जरूरत। इसलिए भक्ति अप्रतिहत नहीं होती, रुक जाती है, वस्तु मिलते ही भक्ति छोड़ देते हैं। दूसरा घाटा। तीसरा घाटा होता है, कई बार वस्तु को मिलने में थोड़ी देर हो जाती है तो हम भक्ति को छोड़ देते हैं और हम नास्तिक बन जाते हैं। हम सोचते क्या फायदा ऐसी भक्ति करने से, भक्ति नहीं करनी। इसलिए ऐसा दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को तीन घाटे से गुजरना पड़ता है। लक्ष्य बदल गया, छोटी वस्तु में गिर गया, नास्तिक बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है, और आस्तिकता बने रहते हुए भी वस्तु प्राप्त होते ही आगे चल के भक्ति छूट जाती है। इसलिए सूत गोस्वामी समझा रहे हैं, भक्ति तो वही है जो गंगा की धारा की तरह समुद्र से मिलने की आकांक्षा को लेकर के बस चलती चली जाए, चलती चली जाए। रास्ते में बड़ी बड़ी शिलाएं आती हैं, गंगा की प्रबल धारा उन शिलाओं को तोड़ देती है, जिन शिलाओं को नहीं तोड़ पाती उनको वहीं रहने देती है और साइड से निकल जाती है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं मेरे घर वाले नहीं करने देते, नहीं करने देते, तोड़ो, नहीं तोड़ पा रहे हो तो साइड से निकल जाओ। भक्ति गंगा की तरह, प्रबल धारा की तरह, समुद्र से मिलने की आकांक्षा की तरह, भगवान श्री कृष्ण से मिलने की लालसा के साथ भगवान की ओर तीव्रता से चलनी चाहिए। बोले अगर कोई ऐसी भक्ति नहीं प्राप्त कर पाता, दुनिया भर के काम धंधों में लगा हुआ है, बोले वो सब व्यर्थ है। धर्मा स्वनिष्ठिताम पुंसा विश्वसेन कथा सुयः न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। अरे भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, बोले ऐसा कोई हम संसार में काम कर रहे हैं जिस काम के चलते हमारी भगवान की कथाओं में रुचि ना हो। भगवान से प्रेम नहीं है कोई बात नहीं, कथा में प्रेम होना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं जिससे कथा से विरक्ति हो गई, बोले वो सब व्यर्थ है, श्रम एव ही केवलम है। धर्म का फल ही है क्या, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्माय कांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म का फल धन नहीं है। हम लोग मूर्खता के कारण सोचते हैं इतना जल चढ़ा रहे हैं ठाकुर जी शंकर भगवान के ऊपर, इतनी आरती घुमा रहे हैं, रोज माथा टेकते हैं, दंडवत करते हैं, तुलसी चढ़ा रहे हैं, एकादशी रख रहे हैं, पैसा ही नहीं आ रहा है। अरे धर्म का फल धन नहीं है, धन का फल धर्म है। धन को धर्म में लगाना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए तो ही जीवन की सार्थकता है, अन्यथा कोई सार्थकता नहीं। सूत गोस्वामी ये सारी वार्ता ऋषि मुनियों को समझा रहे हैं और सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसी भक्ति आती कैसे है। ऐसी भक्ति तो भाई भक्तों की कृपा से आती। उदाहरण देते हैं नारद जी का कि नारद जी पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के जब पुत्र बने तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ब्याह शादी करो, संतान पैदा करो, आगे बढ़ाओ। बोले नहीं, मेरे ये सब झंझट में नहीं पड़ना, भजन करेंगे। थोड़ा क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को। बच्चे बात नहीं सुनते माँ बाप की, तो माँ बाप को क्रोध आ ही जाता है। तो नारद जी ने जब बात नहीं सुनी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बोले बहुत बड़ा साधु बनता है, जा 50-50 स्त्रियों से तुम्हारा विवाह होगा। गिरे, उन्होंने कहा शाप दे दो लगे तो, मैं अपनी इच्छा से तो संसार में नहीं जाऊंगा। गंधर्व बने, 50 गंधर्वियों के साथ विहार करने लगे। इंद्र की सभा में गीत गा रहे थे, स्त्रियों को आकर्षित करने के भाव से सभा इंद्र की थी। इंद्र ने देखा कि ठीक गीत नहीं गा रहे, भगवान का कीर्तन नहीं हो रहा है, भाव अलग है इनका। उनको शाप दे दिया, जाओ दासी पुत्र बन जाओ संसार में जाकर के। इस संसार में आकर के उनको दासी पुत्र बनना पड़ा। लेकिन भगवान का भजन उठाता है, अच्छी भावना हो तो शाप वगैरह कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी का शरीर छूट गया, इनकी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करने के लिए जाती थी। वो ब्राह्मण के यहाँ चार भक्ति वेदांती भक्त लोग आए थे, जो 4 महीने तक चतुर्मास के समय में ठहरे उनके घर पे। नारद जी जाते थे, जाकर के उनके साथ बैठते थे, कथा सुनते थे, उनको देखते रहते थे। ये कैसे भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे भगवान की फूलों की माला बना रहे हैं, कैसे हरि कीर्तन करते हैं, कैसे भजन गाते हैं, ये चर्चा सुनते रहते थे। उनसे परमिशन लेकर के थोड़ा उनका झूठा खा लेते थे दिन में एक बार। भक्ति झूठा खाने से बड़ी जल्दी आती है, कोरोना भी हो जाता है। लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता है, इसमें भक्ति बहुत तेजी से आती है। वैसे लौकिक धर्म के अंदर झूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति में भी शॉर्टकट रास्ता है। सब जगह हम शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, तो भक्ति का भी शॉर्टकट है। क्या रास्ता है? बोले 3 काम करने चाहिए। भक्तों का उच्चिष्ट खाना चाहिए, झूठा खाना चाहिए। भक्तों के चरणों का धोकर के चरणामृत पीना चाहिए। और भगवान के भक्तों के चरणों की जो धूल है उस धूल का आश्रय लेना चाहिए, धूल को मस्तक से लगाना चाहिए। वो अलग बात है कि भक्त लोग आसानी से देते नहीं ये सब चीजें, उसके लिए आपको लेने के लिए उनको खरीदना पड़ेगा प्रेम से, उसके लिए आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, आपको सेवा करनी पड़ेगी। दादागिरी से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग दादागिरी से भी ऐसा लाभ पाए हैं। हालांकि दक्षिण भारत में एक नील नाम का व्यक्ति था, बहुत बड़ा बदमाश था, हट्टा कट्टा था, बहुत आतंक मचाता था, पूरा गैंग था उसका, लीडर था एक प्रकार से। तो राजा बड़ा परेशान, राजा ने क्या किया, उसको टैक्स कलेक्टर बना दिया। दादागिरी का उपयोग किया जाए तो जो लोग बकाया नहीं देते थे राज्य कर, उनसे वो ले लेता था, जा जाके वसूल करता था। जहां चला जाता था हर व्यक्ति अपने आप ही दे देता था। दादा लोग ऐसा करते। तो एक दिन वो जा रहा था, ऊपर एक स्त्री को, सुंदर स्त्री को देखा उसने, उसकी ओर आकर्षित हो गया, दरवाजा खटखटा दिया। दादा था ना, उसका बाप निकला, बाप पालन करता था उस कन्या को। तो बोला मुझे आपकी लड़की पसंद है, शादी करनी है। वो लड़की भक्त थी। बोले मैं तो इसका पालक हूं, मैं इसे पूछ लेता हूं, डर के मारे वैसे ही पूछा। तो उसने देखा, हाँ दादा आदमी, क्या किया जाए। उसने कहा देखो, अगर तुम मेरे से वास्तव में प्रेम से शादी करना चाहते हो तो एक काम करना है। बोले क्या? बोले 1000 भक्तों को उनके चरणों को धोकर के चरणामृत पीना है और उनको भोजन कराना है रोज। कहता बस इतनी सी बात? ले हाँ, एक साल ऐसा करो फिर हम स्वयं आपसे शादी करें। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो उसने टैक्स कलेक्शन बंद, गैंग को लगा दिया चारों तरफ, भक्तों को ढूंढो, 1000 भक्तों को ढूंढो। अब तो गैंग के लोग फैल गए चारों तरफ, जैसे ही धोती कुर्ता वाला है गर्दन पकड़ के सीधा उठा करके वो सब ताकतवर थे, उठा लेते थे भक्त लोग, हाथ पैर फड़फड़ाते थे, नीचे भैया क्या कर रहा है, चुप बैठो, हलचल नहीं करना। एक एक को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में ठूसना, बड़ा सा हॉल में ले जाकर बैठो सब लोग, हम जाकर चुपचाप बैठे, बेचारे कांप रहे, वो सोच रहे ये क्या बीमारी। एक दूसरे भक्तों को सब देख रहे, तो भक्त लोग बेचारे कांप करके बैठे हुए। इधर इसने बड़ा सा नाद जैसा टब लिया और पंचामृत लिया और भक्तों को, सब लोग टांगे आगे करो। अब सोच रहे थे टांगे आगे करके बैठ जाओ मतलब ऐसा तो नहीं टांगों को पकड़ पकड़ करके गोल गोल घुमाया जाएगा। टांगे आगे कर दिया, अब आ रहा जो टांगे आगे नहीं पकड़ के खींच लेते थे उसकी टांग। सबका चरण धोए, सबको बिठा कर, खाओ पूरा खाना पड़ेगा, अच्छी तरह से खाओ, ठूस ठूस के खिलाया। 1 साल बीत गया। अब भक्त लोग भी फिर धीरे धीरे खुद ही पहुंचने लग गए, कुछ मेरे जैसे थे, बढ़िया बढ़िया आइटम मिलते थे ना सोचे अब ऐसे उठ के ठूस के जाना उससे अच्छा पहले से ही चले जाते। भक्त लोग चले जाते थे, खाना चालू किया धीरे धीरे करके। 1 साल बीत गया, जितना भी टैक्स का पैसा था राजा को देने के बजाय सारा इसी में खर्चा कर दिया। राजा टेंशन में आ गया, राजा पहुंचा, भाई पैसा? बोले पैसा कहाँ, सब खर्चा हो रहा है यहाँ। बोले मैंने कब कहा तुमको खर्चा, तूने नहीं कहा लेकिन उसने तो कहाँ से व्यवस्थाएं चलेंगी, सब गवर्नमेंट का पैसा ही तो लगाना पड़ेगा भाई। सब पैसा लगा दिया। अब तो 1 साल बाद उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ, वो लड़की पहुंच गई, हम शादी करना चाहते, बोले मेरी इच्छा नहीं। अरे आपकी इच्छा नहीं है, फिर क्या इच्छा है आपकी? बोले ये भक्तों का भंडारा आगे चलता रहे बस। अब तो उनको चरणामृत की छटपटाहट होने लगी, रोज चरणामृत पीते थे। ये जो काम है ना, ये भगवान के प्रेम का विकृत रूप है। प्रेम खराब हो गया तो काम बन गया है। ये भक्तों की दया से जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर से प्रेम बन जाएगा, और जब फिर से प्रेम बन जाएगा संसार में स्त्री धन दौलत आदि ये सब सब तुच्छ नजर आएगा, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। वो स्त्री कहने लगी, नहीं विवाह तो अब हम आप ही के साथ करेंगे। उसने विवाह कर लिया, बोले तुम भी भंडारे में खीर बांटते रहना फिर। वो भी प्रसाद बांटती रहती थी, कभी भोग नहीं भोग पाए, क्योंकि वो तो निरंतर आनंद में डूबे हुए ना, फिर मलमूत्र में क्या डूबना, उसमें तो शुक्र आदि डूबा करते हैं। इसमें भक्त लोग कभी रमण नहीं करते, भक्त लोग तो कथा में रमण करते हैं। नारद जी ने उच्चिष्ट खाया, उस उच्चिष्ट का ऐसा प्रताप हुआ, नारद जी 5 साल के हैं, दासी पुत्र हैं, भक्ति जागृत हो गई। और जब भक्ति जागृत हो गई 4 महीने बाद जो भक्ति वेदांति भक्त लोग जाने लग गए, अकेली माँ है, नारद जी के अंदर वैराग्य जागा, सबके अंदर नहीं जागता। नारद जी संस्कार थे शुरू से, देखो जो बालक जिसके अंदर चंचलता ना हो ना, खेल कूद आदि, उछल कूद आदि, मोबाइल में इधर उधर, ऐसी अगर नहीं है, धीर गंभीर है, वो बालक बड़ा समझदार है, होनहार बालक है, भगवान जरूर उससे कोई सेवा लेंगे विशेष। जो युवक जिसके अंदर कामुकता ना हो, जो स्त्रियों की ओर बहुत जल्दी आकर्षण ना महसूस करता हो, वो युवक विशेष है, संस्कार है उसके पूर्व जन्मों के। जो वृद्ध जिसके अंदर तृष्णा ना हो कि और संपत्ति आ जाए, और मकान बन जाए, और हवेली खरीद लूं, यहां भी फ्लैट वहां भी फ्लैट, ये तृष्णा ना हो, वो वृद्ध विशेष होता है, ये भगवान की प्राप्ति करने वाले होते हैं। नारद जी ऐसे ही छोटे से बालक हैं, गंभीर हैं। जब वो जाने लगे तो नारद जी भी पीछे पीछे चल पड़े। साधुओं ने देखा, अरे तुम कहाँ आ रहे हो? बोले मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। हमारे साथ? हमारे साथ क्यों चलना चाहते हो? आप मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा, ऐसा तुम्हें हमारे अंदर क्या अच्छा लगता है? बोले आप जो गाते हो, आप जो कथा करते हो, आप जो भगवान का श्रृंगार करते हो, आप जो भगवान का नाम जपते हो, आप जो एक दूसरे के साथ प्रीति के साथ गले लगाते हो, आप जो मीठा बोलते हो, आपका एक एक व्यवहार बहुत खींचने वाला होता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, ये सब चीजें हम तुम्हें सिखा देते हैं, तुम इन सब चीजों को लेकर के यही रहो, यही चीजें अच्छी लगती है ना, तुम ऐसे बन जाओ। तो उन्होंने भक्ति की शिक्षा दी, शिक्षा दिया, भक्ति करने लगे, बड़ा आनंद आने लग गया। सोच रहे स्वतंत्र होकर के सब जगह घूमते घामते भक्ति करता, लेकिन माँ है, भगवान ने क्या किया, माँ को सर्प से कटवा दिया, भगवान अपने धाम को ले गए। छोटे से 5 साल के बच्चे हैं नारद जी, प्रसन्न हो गए, अच्छा हुआ माँ मुक्त हो गई। अब तो 5 साल की अवस्था से घर छोड़ करके निकल गए, नगरों से भ्रमण करते हुए, जंगलों से भ्रमण करते हुए, गुफाओं से भ्रमण करते हुए बहुत थक गए। एक सरोवर में जाकर के पानी पिया, वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने लग गए। साक्षात भगवान हृदय में प्रकट हुए और एक झलक दिखाई। अचानक से भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो एकदम से ऐसे छटपटाने लगी जैसे पानी के बिना मछली। बहुत प्रयत्न करने लगे, लेकिन फिर भी भगवान ने पुनः दर्शन नहीं दिया। रोने लग गए फूट फूट करके। आकाशवाणी हुई, बोले चिंता मत करो, अब तुम्हारे जीवन में पुनः दर्शन नहीं प्राप्त होंगे, पूरी तरह से हृदय को शुद्ध बनाओगे तब दर्शन। पूरा जीवन भक्ति किया और भक्ति करने के बाद शरीर छोड़ा। अचानक से ही जैसे बिजली चमकती है ना, क्षण मात्र में शरीर छोड़ा और दूसरा साक्षात नारद जी का दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। बोलो नारद जी महाराज की। अब तो दिव्य स्वरूप नारद जी का प्राप्त होते ही भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान ने साक्षात रूप से दर्शन दिया, और दर्शन ही नहीं दिया, एक सुंदर दिव्य वीणा भी दी। अब इस पे आप निरंतर मेरा गुणगान करते हुए संसार में विचरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई वीणा नहीं दी है, हमें भी ये गले रूपी कंठ रूपी वीणा दिया है, हम भी इसका उपयोग करके भगवान के भजन में लगा सकते हैं अपने जीवन को, और जीवन को भक्ति में लगा करके सफल बना सकते हैं। नारद जी की ये विशेष कृपा हम सब पा सकते हैं इस परंपरा के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा जो ये परंपरा है, उन्हीं नारद जी की दया से आगे चल करके वेद व्यासी कृपा पात्र बनते हैं, और उनकी दया से शुद्ध गोस्वामी, और उनकी दया से इस परंपरा में आगे हम सभी भागवत को प्राप्त करके अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे, कथा तो बहुत आगे जानी थी। बस आप सभी से जीवन में यही प्रार्थना है, आप सभी भक्ति को समझें, पाप में जीवन ना व्यतीत करें, भगवान की ओर मुड़ना है और जीवन को सफल बनाना है।